बार सता से सता से क्या निकाल चला है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर रात पहुंची अज्ञान अंधेरी रात जिसमें महाशिवरात्रि का पर्व गाया हुआ, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। उस अंधेरी रात्रि में राही कौन से, कौन सी मंजिल के राही है, मुक्ति और जीवन मुक्ति रूपी सवेरा में जाने के राही, उनको किसने कहा थक मत जाना। जो बाबा ने कहा कि बच्चे थक मत जाना, अब मंजिल लंबी नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है, क्योंकि ये रात बेहद की और दिन बेहद का मनुष्यों के लिए है, ये देवताओं की बात नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये देवताओं का तो दिन ही दिन होता है, ये संगम में ही बेहद की रात और बेहद का दिन होता है। शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं, क्योंकि न तो वो अज्ञान अंधेरे में आता है और न सतगुरु की सवेरे में जाता, ये तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। तो गायन जितने भी गाए जाते हैं वो किस समय के गायन है, संगम युग के गायन है। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता 2500 वर्ष का दिन होता है तो वहाँ का कोई गायन है ब्रह्मा का दिन का, क्योंकि वहाँ तो ब्रह्मा भी नहीं होता, ब्राह्मण भी नहीं होते, न सतयुग त्रेता 2500 वर्ष रात होती है, वहाँ भी ब्रह्मा और ब्राह्मण नहीं होते, वहाँ तो वैश्य और शूद्र होते हैं। तो ये तुम ब्राह्मण मनुष्यों के लिए है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, शिव का दिन शिव की रात नहीं कहेंगे, तो वो रात और दिन के चक्र में नहीं आता, सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, उसी का दिन और रात एक ही रात नहीं होती, ब्राह्मणों की भी रात गाई हुई है। अभी है भक्ति मार्ग का अंत और साथ साथ घोर अंधेरे का भी अंत है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब के ब्रह्मा की रात होती है, ब्रह्मा का दिन कब कहे, जब जब अज्ञान सूर्य साकार ब्रह्मा में प्रत्यक्ष है तो ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा किसी मनुष्य गुरु के पास ठोकर नहीं खाई सकता, फिर ब्रह्मा ही अंधेरे में आता, माना अज्ञान अंधेरे में आता है, तो फिर ब्रह्मा की सोल को भी देहधारी गुरुओं की ठोकरें खानी पड़ती। कैसे कैसे ठोकरें खानी पड़ती, इसकी नयन में ब्रह्मा का तन छूट गया, साकार में जो परमात्मा माता के रूप में पार्ट बजाए रहा था, जो ज्ञान सूर्य शिव पार्ट बजाए रहा था वो भी गया, कहाँ गया, वान प्रस्थवस्था वाणी से परे, पहचान में कैसे आएगा? तो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात हुई, तो ब्राह्मण ठोकरें खाते हैं, ये बात तो ठीक देहधारी धर्म गुरुओं की, लेकिन ब्रह्मा ठोकरें खाता है ये कैसे? ब्रह्मा की सोल को भी बार बार देहधारी धर्म गुरुओं के चक्र में आना पड़ता है, निमंत्रण देते हैं आओ, और वो आते हैं, लेकिन बुलाते हैं मेहमान को, लेकिन उसकी बात बात कोई नहीं मानते, तो बार बार आते बार बार जाते नजर। तो अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े। मनुष्य भल कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कौन से मनुष्य कहते हैं? बाहर की दुनिया के तो कहते ही हैं शास्त्रकार, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, सिर्फ कहते हैं। तो अभी ब्राह्मणों की रात कहेंगे, ब्राह्मणों का दिन नहीं। क्यों? दिन में तो देवता बन जाते हैं, हैं? कोई भी ब्राह्मण ये कह सकता है कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया? देवता मन क्या? देवता कुछ न कुछ देने वाला, सुख देने वाला, दुख नहीं देने वाला। तो अभी क्या कहें? अभी ब्रह्मा का दिन कहें या रात कहें? ब्रह्मा की रात ही कहें, क्योंकि अगर दिन कहें तो दिन में कौन होने चाहिए? देवता होने चाहिए। देवताएं तो सुख देने वाले होते हैं, दुख तो किसी को देते नहीं, दुख तो असुर देते हैं। तो हिसाब करना होता है ना, बाप अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, अंधियारे की रात। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्रह्मा की रात में है या दिन में है? रात माना ज्ञान सूर्य भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? मम कौंसावली तो दिन में होंगे, फिर ब्रह्मा की रात क्यों गाई हुई है? कुकवंशावली के लिए रात है और मुखवंशावली के लिए दिन है। मुखवंशावली की पहचान क्या होगी? जो ब्रह्मा मुख से कहे, जो ब्रह्मा साकार मुख से कहे, वो मानना पड़े। अगर मानता भी नहीं तो करने की तो बात ही दूर। मानता भी नहीं, करता भी नहीं, तो उसे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वो कोख से प्यार करके छिट गया, कोख माना देह से, देह के आकर्षण से खींचा हुआ ब्राह्मण है मुखवंशावली। वास्तव में मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं। तो जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जो जाकर देवता बनेंगे, बदली होती, ट्रांसफर होते काहे से काहे में, ब्राह्मण तो देवता, पहले शूद्र सो ब्राह्मण में बदली होती है, फिर ब्राह्मण से देवता में बदली होती है, इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदल नहीं होती, कलयुग है पुराना युग और सतयुग है नया युग। एक त्रेता 25% पुराना और द्वापर 50% पुराना, युग का नाम ही बदल जाता है। कहाँ सतयुग, कहाँ द्वापर। सत्य एक होता है या दो चार होते हैं, सत्य तो एक ही होता है। कैसे भी है गॉड इज ट्रुथ। और द्वापर का मतलब दोपुर, यहाँ दो दो बातें सत्य मानी जाती है, दो धर्मों की शुरुआत हो जाती है, दो दो प्रकार के शासन चल पड़ते हैं, तो जरूर एक सत्य होगा और एक असत्य भी होगा। द्वैत माना दैत्य, दैत्यों की दुनिया, उसे देवताओं की दुनिया नहीं कहेंगे। दो का शासन चलता है, एक का शासन नहीं चलता, तो बदली हो जाती है, नई दुनिया बदल पुरानी बन जाती है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया में, नए युग में राम राज्य हो अथवा ईश्वरीय राज्य हो। गांधी जी कौन से युग में हुए, कलयुग में। और गांधी जी कोई अकेले तो थे नहीं, उनके साथ को साथ देने वाले 40 करोड़ थे उस समय। सबकी यही तमन्ना थी कि नए युग में राम राज्य। तो कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, जरूर सतयुग आएगा। और सतयुग में क्या राम राज्य होता है, शास्त्रों में तो लिखा सतयुग में नारायण का राज्य होता है। तो फिर उन्होंने क्यों कहा, गांधी जी तो गीता हाथ में उठाते थे, गीता को पढ़ने वाले थे, क्या वो नहीं जानते थे कि सतयुग नई दुनिया में राम राज्य होगा या नारायण का राज्य होगा है? उन्हें तो कुछ भी पता नहीं कि राम राज्य क्या होता है और नारायण राज्य क्या होता है और कहाँ होता है। मुख से कहते थे पतित पावन सीताराम और हाथ में गीता उठाए लेते थे, समझते थे कृष्ण गीता का भगवान है। फिर भी जो तमन्ना थी 40 करोड़ मनुष्यों की गांधी जी के साथ, तमन्ना तो पूरी होनी थी ना। समय पाप आते हैं और आकर के पुरानी दुनिया कलयुग को बदल नई सत्य की दुनिया बनाते हैं, उस नई सत्य की दुनिया में ही राम राज्य होगा। राम के द्वारा जो राज्य स्थापन होता है उसका नाम पड़ता है राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य, क्योंकि ईश्वर ही राम राज्य बना स्थापन करता है। तो वास्तव में ईश्वर कहा जाता है बाप। नई दुनिया कोई मनुष्य स्थापन नहीं कर सकता, नई दुनिया रचने वाले को ही क्रिएटर कहा जाता है। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? कि भगवान तो गीता ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर बाद में हम ब्राह्मण मनुष्य नई दुनिया बनाते रहते हैं। पाप कहते हैं नई दुनिया कोई मनुष्य स्थापन नहीं कर सकता। नई दुनिया रचने वाले को क्रिएटर कहा जाता है, क्रिएट करने वाला। नई दुनिया क्रिएट करता है, क्रिएटर जरूर साकार में चाहिए, क्रिएशन भी साकार में चाहिए। तो राम बाप की क्रिएशन है स्वर्ग, नई दुनिया। वो कोई आत्माओं का रचयिता नहीं है, आत्मा तो अनादि। हाँ, वो आत्माओं का बाप है, एक ही बाप। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, सूत्र से ब्राह्मण बनाने में और ब्राह्मण से देवता बनाने में, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर हैं। बाप स्वर्ग रचता है, तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। परंतु सिर पर जो पापों का बोझ है उसको उतारने में टाइम लगता है। क्या पाप किए हैं तो पाप करने से दुख तो देने के निमित्त बनते हैं ना, अपन को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो हिसाब किताब तो पूरा जरूर होना है, चाहे वो योग बल से हो और चाहे भोग से हो, भोग बल से। पापों का बोझ है तो उनको उतारने में टाइम लग जाता है, हिसाब किताब करने में, लेन देन करने में टाइम लग जाता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझ। आगे जब बाबा कहते थे तो जितमानी बाप याद आता था, अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती। ऊपर माना, ऊपर चली जाती है माना कहाँ चली जाती है? परम धाम। अभी बाप एक कश्ती पर आया और बुद्धि ऊपर चली जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, ऊपर चली जाती है का मतलब ऊंची स्टेज में जाती है, इस देह और देह की धरनी से परे चली जाती है। दुनिया में और किसी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है। हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही रूहानी है। मन हमारा बाप रूह बिंदु है, हमारा टीचर बिंदु है रूह सिर्फ, हमारा सदगुरु रूह बिंदु है। याद भी हम उस बिंदु को करते हैं, ऐसे बिंदु कैसे चीज करेगा, बिंदु कैसे बाप बन करके वर्षा देगा स्वर्ग का, कैसे स्वर्ग क्रिएट करेगा? क्रिएटर तो जरूर साकार चाहिए, क्रिएशन स्वर्ग भी साकार में चाहिए। इससे साबित होता है कि वो बाप टीचर और गुरु तीनों भले इकट्ठा एक ही शरीर से है लेकिन साकार में है। सिर्फ बिंदु बिंदु नहीं हो सकता, तो याद भी उनको करते। जब ब्रह्मा के तन में आया हुआ है और ब्रह्मा के तन में बैठ के बोल रहा है तो याद उनको करते हैं, ऐसे दूर क्यों कह दिया है? तो बाजू में ही बैठा हुआ है बोलने वाला, बोलने वाली आत्मा तो ब्रह्मा के भ्रकुटी के मध्य में बाजू में ही बैठी हुई है। बिंदु फिर उनको क्यों कहा, इनको क्यों नहीं कहा, या मुझको क्यों नहीं कहा? जरूर वो पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए उनको कहा। अपन को आत्मा समझना है, ये पुराना शरीर है, इस पुराने शरीर को क्या संस्कार करना है, क्या संस्कार करना है? इस पुराने शरीर को संस्कार करने की परवाह करनी है या संभाल करने की परवाह करनी है? संभाल करना है, क्योंकि इससे पुरुषार्थ करना है। बाकी संस्कार करना है कि बहुत सुंदर दिखाई पड़े, हाय हमारा शरीर न कहीं बिगड़ जाए, लिथड़ा न हो जाए, तो उसको देहभान कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कहेंगे देहभान। तो कहेंगे कि आत्मा समझते हैं? फिर नहीं कहेंगे कि आत्मा समझते हैं, माना देहभान में है तो संगार संगार। बाकी संभाल करते हैं शरीर की, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि शरीर से ही पुरुषार्थ करके हमको विश्व की बात आई पाप से कयामत के समय में भी लेनी है, तो संभाल तो करनी है। परंतु अंदर में हम समझते हैं कि अभी हम वनवास में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं, क्या वनवास में? वन में क्या होता है, जंगल में क्या होता है? जंगल में तो कांटे ही कांटे होते हैं, कांटे क्या करेंगे? कांटे तो चुभेंगे, दुख देंगे। तो अभी हम ससुर घर फूलों की दुनिया में जाने वाले हैं, अभी कोई हम ऐसी दुनिया में पहुंच नहीं गए हैं, पिछाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं, इस समय सारी विश्व जैसे कि बनवा है, इसमें रखा ही क्या है? जो शरीर की श्रृंगार करें, कुछ भी नहीं रखा। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरातों की महल थी, अथवा सूर्यवंशी विश्वपरी विश्वपुरी थी। उस ससुर घर में किसने भेजा, जहाँ इतने माल ठाल थे? अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है, सारा कल्प लग गया है। अपने ससुर घर को भूले हुए, अभी तुम किसके पास आए? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप दादा किसे कहें? बाप दादा दो हुए, अलग अलग हुए या एक हुए? बाप में दादा ने प्रवेश किया है तो एक हो गए। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, क्या बात हुई है? दादा कौन यहाँ का रहवासी? ब्रह्मा। और फिर बाप? बाप में दादा ने प्रवेश किया है, बाप में दादा ने प्रवेश किया है। हाँ, यहाँ दादा कौन हुआ? हाँ, दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। और बाप कहाँ का रहवासी है? अरे राम बाप कहाँ का रहवासी है? वो यहाँ का रहवासी नहीं है क्या? है? राम बाप यहीं का रहवासी है, परमधाम से आया है राम बाप। यहाँ बाबा की बात नहीं हो रही है, बाप और दादा दो आत्माओं की बात हो रही है। बाप में दादा ने प्रवेश किया है, तो प्रवेश करना शरीर में होगा ना, तो शरीर किसका हुआ, बाप का हुआ या दादा का? तो वो बाप कौन जिसके शरीर में प्रवेश हुआ? प्रजापिता हुआ ना, राम बाप हुआ ना। बाप में दादा ने प्रवेश किया है, दादा तो है ही यहाँ का रहवासी। कौन दादा? मन ब्रह्मा बाबा। बड़े भाई को दादा कहते हैं, वो तो है यहाँ का रहवासी, माने सात आठ पार्ट बजाने वाला। बोल सच्ची पर भले शिव भी उसमें प्रवेश कर जाता है तो भी निराकारी स्टेज वाला नहीं बनता। हाँ, शरीर छोड़ने के बाद आकारी, शरीर छोड़ने के बाद आकारी बनता है। तो शरीर अगर धारण करेगा तो रहवासी कहाँ का हुआ? यहाँ का रहवासी। बाकी बाप कहाँ का रहवासी? बापू जी यहाँ का रहवासी, राम बाप जिसने प्रवेश किया है, हैं? राम बाप यहाँ का रहवासी है। ज्यादा पापी कौन बनता है, राम की आत्मा बनती है या कृष्ण की आत्मा? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियन से न ज्यादा तत्व प्रधान बनते और न ज्यादा तमो प्रधान, तो क्राइस्ट भी न ज्यादा तत्व प्रधान बनता है न ज्यादा तमो प्रधान बनता। तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई, माना कृष्ण वाली आत्मा क्राइस्ट जैसा पार्ट बजाती है, न ज्यादा तमो प्रधान बनती न ज्यादा सत्व प्रधान। 69 तक चैन की वंशी बजाते हुए पुरुषार्थ पूरा कर लेते, उनको तमो प्रधान विनाश के पीरियड से साकार शरीर के द्वारा नहीं गुजरना पड़ता। तो ज्यादा तमो प्रधान तो नहीं बनी। तो ज्यादा जो तमो प्रधान बनता है वो कौन हुआ? राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा इतनी तमो प्रधान बनती है कि सिवाय बाप की याद के निस्तार का कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए बाबा ने बोला है कि योग बल से तुम विश्व की बादशाही पा जाते। ऐसे नहीं कहा धारणा के बल से या ज्ञान के बल से विश्व की बादशाही पाते हो या सर्विस के बल से विश्व की बादशाही पाते हो, नहीं। क्या कहा? योग बल से तुम विश्व की बादशाही पाते हो। इसका मतलब कि राम वाली आत्मा सिर्फ योग में रहती है अंत में, बाकी सारा काम कौन करते हैं? बाकी सारा काम कौन आत्माएं करने वाली है? ब्रह्मा की दादा की सोल और शिव बाप की सोल सारा कार्य उसके शरीर के द्वारा। बाकी वो आत्मा मन बुद्धि से कहाँ की रहने वाली हुई? परमधाम के बिल्कुल नजदीक ऊंचे से ऊंची स्टेज सूक्ष्म बतन के भी तीसरे तबके में। कितने तबके दिखाए हैं सूक्ष्म बतन? ब्रह्मापुरी, नीचे विष्णुपुरी और
19 नंबर के रजिस्टर में 4/12/87 का काफेट क्लास पहले पेज का मध्यान्ह। बाप दादा दोनों कंबाइंड है, कहां? इस दुनिया में संगम युग में बाप और दादा दोनों कंबाइंड हैं, माना राम बाप। राम बाप कब कहा जाए? जब सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रवेश हो तो हुआ राम बाप प्रजापिता, वरना तो 84 जन्मों में प्रजापिता का किसी को ज्ञान होता ही नहीं। आदम का या एडम का या प्रजापिता का ज्ञान होता ही कब है? जब संगम युग होता है। तो बाप राम और दादा कृष्ण दोनों कंबाइन। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। राम वाली सोल को परम पिता कहेंगे है? परम पिता कहेंगे कि परम आत्मा कहेंगे? क्योंकि उसका भी कोई पिता है। किसका? प्रजापिता का भी कोई पिता है। कौन? देव बाप। वो उसकी भी आत्मा का बाप है। और परमात्मा, परमात्मा कौन? ज्योतिबिंदु शिव। परम कहा तो किसी से भेंट की गई है? जब परम कहा गया तो भेंट किससे की गई? आत्माओं से भेंट की गई है। तो जिन आत्माओं से भेंट की गई वो आत्माएं जन्म-मरण के चक्र में आने वाली है या जन्म-मरण के चक्र से न्यारी है? चक्र में आने वाली है। तो जो चक्र में आने वाली है उन्हीं के साथ ही चक्र में आने वाले की भेंट की जाएगी ना? कि सुप्रीम सोल की भेंट की जाएगी? भेंट किसकी किसके साथ की जाएगी? चक्र में आने वाली जो आत्माएं हैं उनमें जो परम है वो कौन है? जो सब मनुष्य आत्माओं का बाप है वो परम। तो परम पिता पहले और परमात्मा बाद। जैसे शिव पहले और शंकर बाद में, बाप पहले और दादा बाद में, तो ऐसे ही यहाँ कहा कि परम पिता परमात्मा पतित पावन है। पतित पावन में भी पतित पहले और पावन बाद में, ऐसे भी पतित पावन में पतित शब्द पहले क्यों कह दिया और पावन शब्द बाद में क्यों कहा? पावन कौन है? एवर प्योर कौन है? देव बाप। और पतित कौन है? प्रजापिता। जो प्रजा का पिता है वो कलयुग के अंत में पतित है या पावन है? पतित समकामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता है। तो किसको पहले रखना चाहिए किसको बाद में रखना चाहिए? पतित को पहले क्यों रख दिया? हाँ, पतित के द्वारा ही जो एवर प्योर बाप है वो पावन बनाता है। अगर उसको आगे नहीं रखा तो पीछे कर दिया। तो पतित के पावन बन सकेंगे या इब्राहिम बुद्ध कैसे बन सकेंगे? कैसे बनेंगे या देवता बनेंगे? क्या बनेंगे? पतित से पावन बनने के लिए अगर उस पतित को आगे नहीं किया या छोड़ दिया तो पति तो पावन बन सकेंगे? क्योंकि शरीर के बिना बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो शरीर की प्रधानता हो गई। जैसे जो बाप आते हैं तो कहते हैं माता गुरु को आगे करना कहते हैं ना? तो प्रजापिता भी शरीरधारी है ना? ऐसा तो नहीं शरीरधारी नहीं है, शरीरधारी तो है, लेकिन पतित पावन की जहाँ बात आती है तो पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद में, दोनों को मिलकर के पतित पावन बना। तो बताया उनकी आत्मा अगर कृष्ण में होती पतित पावन बाप की आत्मा अगर कृष्ण में होती वो ज्ञान सुनाती तो कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। कृष्ण को ज्ञान सुनाता नहीं, ज्ञान सुनाने वाला कौन है? जो बाप। परंतु कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं। क्यों शोभता क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण को बच्चा बुद्धि है, बच्चे को पतित कहना ये सुरत है। बच्चा तो महात्मा होता है, बच्चे को क्यों पतित कहा जाएगा? बच्चे में कोई विकार होते हैं क्या? तो कृष्ण की सोल तो कलयुग के अंत में भी ऐसा पार्ट बजाती है जैसे कोई बच्चा पार्ट बजा रहा, बच्चा बुद्धि, बेबी बुद्धि। इसलिए मुरली में बोला है कि बाबा इन ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। मुरली में भी बोला ब्रह्मा को ही प्रजापिता गाया हुआ है। ब्रह्मा को प्रजापिता क्यों गाया हुआ है? क्यों गाया हुआ है? क्योंकि पिता माँ का आधार लेता है। पिता की नाम और मौजूदगी में मान लो पिता शरीर छोड़ दे तो बच्चों की पालना कौन करेगा? बच्चों के लिए बाप कौन कहा जाएगा? माँ ही बाप का काम करेगी ना। कोई न कोई किसी न किसी तरीके से बच्चों को पालेगी ना। तो बाप टाइटल धारी तो हुआ ना। पांडे जी मर गए तो श्रीमती पांडे जी कहलाएंगी ना। तो ब्रह्मा को ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप समझाते हैं कल स्वर्ग, अब रावण ने नरक बनाया। अब फिर बाप स्वर्ग बना दे। तुम्हारे लिए छोटी सी कहानी हो गई है क्या कि राम बापा के स्वर्ग बनाते हैं और रावण रावण नरक बनाते हैं? बाप ने समझाया ये 5-4 वर्ष का चक्र है, तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उसमें ये लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद के बाप ने स्वर्ग का वर्षा कैसे दिया, अथवा बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते क्या? ऐसे नहीं एक मूर्ति बाप से वर्षा लिया जाता है। एक मूर्ति कौन पता? कभी तो ब्राह्मण की यही समझते हैं एक मूर्ति, मूर्ति माने भूत साकार रूप। कौन सा साकार रूप? ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने ज्ञान सुनाया और वही हमको 21वें जन्म का वर्षा दे गई। वो है मेहलमानी आचारियां हमें जो कुछ भी मिली अच्छे अच्छे म्यूजियम वो हमें उनसे वर्षे में प्राप्त हो गए। सुख धाम और शांति धाम हमको उनसे वर्षे से प्राप्त हो गया। ये कोई पाप का वर्षा नहीं है। एक मूर्ति से असली वर्षा नहीं मिलता। जो स्वर्ग का असली वर्षा है वो कब मिलता है और किससे मिलता है? त्रिमूर्ति बाप, यानी तीनों मूर्तियां होनी चाहिए। बाप जब आते हैं इस धरा पर तो भी तीनों मूर्तियां होती हैं, अकेले नहीं आते। जो बाप भी जब आते हैं तो उस समय भी तीनों मूर्तियां होनी जरूरी है, और अंत में जब वर्षा देकर जाते हैं तो उस समय भी तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए साकार। तो 5000 वर्ष पहले मासिक हम फिर से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते। सिर्फ एक मूर्ति की जयंती नहीं मनाते, त्रिमूर्ति जयंती, तीन मूर्तियों की जय जयकार। ये तीन मूर्तियां माना शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं जिनका झंडा हम बुलंद करते हैं, ऊंचा करते हैं। कोई कपड़े के झंडे की तो बात नहीं है, ये अक्षर जरूर डालना पड़े। क्या? त्रिमूर्ति शिव जयंती। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बातें देख करके मनुष्य वंडर खाएंगे। इकट्ठी तीन मूर्तियों की जयंती होगी, एक मूर्ति दो मूर्तियों की नहीं, एक मूर्ति ने इतने वर्ष लगाए दिए, फिर दूसरी मूर्ति कौन सी, एक मूर्ति की बात से दूसरी मूर्ति कौन सी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना फिर विष्णु के द्वारा पालना शुरू हो जाती है, नहीं, ब्रह्मा द्वारा सत्य ब्राह्मणों की स्थापना, सत्य ब्राह्मण स्त्रियम हो जाते, स्थाई हो जाते, माने स्थापना हो जाती, और शंकर द्वारा जो झूठे ब्राह्मण हैं वो हिलते हैं, उनकी स्थापना नहीं उनका विनाश, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ, उनकी बुद्धि भी हिलती है, और जब बुद्धि हिलती है तो पवित्रता का विरुद्ध भी टूटता है, तो शरीर भी जैसे हिल गया, तन भी हिला मन भी हिला, और धन भी जिस एग्जैक्ट कार्य में लगना चाहिए, रूहानी हॉस्पिटल खोलने तो कहाँ लगता है, जिस्मानी हॉस्पिटल, जैसे दुनिया चलती है वैसे चलती, तो तन मन धन समय संपर्क और संबंध सब हिल जाते, सबका विनाश हो जाता, ऐसी नई नई बातें देख करके मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भव क्या करना है, बातें कैसी सुनानी है, भव के वाली क्या, जैसे आग जलती है ना और उसमें घी डाला जाता है तो क्या होता है, भभू का लेता है, तो ऐसे ही प्रदर्शनी में शिव जयंती में जो हम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करें उसमें बातें कैसी सुनाए जो भभू का पैदा करें, भभके वाली। तो हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं क्या, हम कोई जड़ चित्रों की त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं मनाते हैं, वो तो शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं, पहले शिव जयंती की छुट्टी अनऑफिशियल थी क्या, वास्तव में जब शिव नहीं आया था तब तक छुट्टी भी अनऑफिशियल थी, और शिव बाप कब से आता है, 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो जब से वास्तव में बाप आता है तब आता है, घोर अंधेरी रात्रि में, घोर अंधेरी रात्रि किसे कहें, दुनिया तो अंधेरे में थी ही लेकिन ब्राह्मणों की जो ब्रह्मा की औलाद है वो ब्राह्मणों की दुनिया भी जब घोर अंधेरे में आ जाए तो कहेंगे घोर अंधेरी, धर्म की ग्लानी, दूसरे धर्मों की ग्लानी वो बात नहीं है, ब्रह्मा द्वारा जो धर्म की धारणाएं सिखाई जाए उनकी भी ग्लानी करने लग पड़े, ब्रह्मा की भी दाढ़ी की लाज न रखने वाले बच्चे पैदा हो पड़े, तो पहले छुट्टी नहीं करते थे ऑफिशियल, और अब ऑफिशियल छुट्टी करते हैं, कोई करते हैं कोई नहीं करते, ये उस समय बोला जब बाबा जीवित थे, तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है, जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं बहुत खुशी मनाते हैं, भारत में उस समय शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल नहीं थी और क्रिसमस की छुट्टी ऑफिशियल थी, क्यों, भारत में जब शिव जयंती मनाई जाती है विदेशों में तो मनाई नहीं जाती, क्रिश्चियंस के देशों में तो नहीं मनाई जाती, तो भारत में जब शिव जयंती होती है शिव आता है भगवान आता है तो भारत में ऑफिशियल छुट्टी नहीं शिव जयंती की मनाई गई, और विदेशों की जो परंपरा है वो भारतवासी क्यों मना रहे हैं ऑफिशियल, क्योंकि यथा राजा तथा प्रभु। यहाँ भारत में जब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा कार्य करता है तो ब्रह्मा लूज क्या शंकर को त्रिमूर्ति में शिष्ट दिखाया गया, तो ब्रह्मा लूज तो उस समय जयंती भी लूज होती, नहीं हो सकती। लेकिन जब पार्ट ही फिक्स होता है तो छुट्टी भी ऑफिशियल होने लग पड़ती। तो बताया ये तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, कौन सा त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्रिश्चियंस का तो 25 दिसंबर बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन मनाते हैं, और तुम्हारा शिव जयंती बहुत बड़ा दिन। उनके 25 दिसंबर के बाद वो समझते हैं बड़े दिन शुरू हो गए। क्या सूर्य ज्यादा समय तक उगना शुरू होता है, और वास्तव में तुम्हारा दिन तो बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिन, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा दिन। यानी भारत में नए वर्ष की शुरुआत पहले मानते हैं बाद में, जो विदेशी संगत है वो पहले है और स्वदेशी संगत बाद में शुरू होता है, विक्रम संगत जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशियों के लिए तो रात्रि के 12 बजे से ही सूर्य का उदय हो जाता है, विदेशी ही बाप को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन प्योरिटी की कमी होने के कारण वो प्रत्यक्षता पूरी हो नहीं पाती, और भारतवासी तो जन्म जन्मांतर के संस्कार वाले हैं। ओरिजिनल कौन से संस्कार वाले? प्योरिटी के संस्कार वाले। आज भी भारत में कन्याओं माताओं की कितनी सेफ्टी होती है, उतनी दुनिया की किसी देश में उतनी सेफ्टी नहीं होती है। तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है, जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अब तुमको भी खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम देह के बाप से वर्षा ले रहे, जो जानते हैं वो ही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स पर आपस में मिलेंगे, यहाँ तो सभी आ न सके काय के लिए, यहाँ काय के लिए ना आ सके, शिव जयंती मनाने के लिए यहाँ तो सभी आ न सके, तो कहाँ मनाए? अपने अपने सेंटर्स पर, अपनी अपनी गीता पाठशालाओं में इकट्ठे होकर के धूमधाम से शिव जयंती मनाए। हम मनाते हैं जन्मदिन, शिव बाबा की मृत्यु तो हो नहीं सकती, क्या हम क्या मनाते हैं? जन्मदिन। और वो क्या मनाते हैं है? वो क्या मनाते हैं? मृत्यु दिन। शिव बाबा ने कभी शरीर छोड़ा? उनके हिसाब से, उन ब्राह्मणों तथाकथित ब्रह्मणों के हिसाब से 18 जनवरी 1969 तो उनके लिए वो स्मृति दिवस हुआ, तो वो 18 जनवरी धूमधाम से मनाते, और हम मृत्यु दिवस नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुरु है वो है अकाल मूर्त सतगुरु, कालों का काल महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, और उन्होंने जिसको गुरु बनाया है उसको काल खा जाता है। तो शिव बाबा का तो मृत्यु हो नहीं सकता, जैसे शिव बाबा आए वैसे चला गया, क्या कहा? जैसे आया वैसे चला गया। दुनिया में कैसे आते हैं? रोते हुए आते हैं और हिलकोरे खाते हुए जाते हैं। तो बाबा तो न रोते हुए आता है और न हिलकोरे खाते हुए जाए, जब बाबा चला जाएगा ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस बाबा कभी चला जाएगा, जब ज्ञान पूरा हो गया माने हर आत्मा को अपने अपने स्वरूप का ज्ञान पूरा हो जाएगा। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने अपने पार्ट को जान जाएंगी, हु एम आई और हमारा बाप कौन, इस मनुष्य शक्ति पर हम सबका बाप कौन है, ये ज्ञान पूरा हो जाएगा और लड़ाई शुरू होगी। बस उनको अपना शरीर तो नहीं है, तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है, इन्हें मेहनत लगती है। बच्चों ने तो आत्माभिमानी जानते हैं, शरीर बूढ़ा हुआ इनको अब छोड़ दूसरा लेना है, मनुष्य ने जो शरीर लिया है वो छोड़ेंगे भी, वहां अकाल मृत्यु नहीं होगा। कहां कहां अकाल मृत्यु नहीं होगा, में भी नहीं होगा अकाल मृत्यु, और यहाँ संगम में भी तीसरा जन्म होगा उसमें भी हाथ फेल होकर के तुरंत ब्राह्मणों का मृत्यु नहीं हो सकती, और ज्ञान में भी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। पता ही नहीं चलता है कब लुढ़क गया ज्ञान में, कब मर गया और कहाँ चला गया। यहाँ तो बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाए, वहां तो टाइम पर शरीर देते जैसे सर्फ, यहाँ तो बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। यहाँ और वहां में कितना फर्क हुआ है, कहेंगे ईश्वर की भाभी हार्ट फेल हो गया, कहेंगे ईश्वर की भाभी। अब क्या ईश्वर की भाभी है ये, ईश्वर तो कहता है तुम इसी जन्म में नरक नारायण बनो या मरकर के नारायण बनो, इसी जन्म में जीते जी नरक से नारायण बनना है। वो कहते हैं ईश्वर की भाभी, परंतु ईश्वर की भाभी नहीं है, है? ईश्वर नहीं चाहता कि तुम शरीर छोड़ दो हार्ट फेल होकर के या ऑक्सीजन में खोपड़ा तोड़वा के, ईश्वर चाहता है नहीं, ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे, तुम कहेंगे ड्रामा की भाभी। ईश्वर तो चैतन्य है और ड्रामा ड्रामा की जड़ है, ड्रामा में इनका पार्टी है, ऐसा इनका इनका हाँ हाँ पार्टी है, ऐसा था ड्रामा का कोई और को मालूम नहीं है। अभी तो है आयरन एज वर्ल्ड, नई दुनिया गोल्डन एज भी, उनको सोने की दुनिया कहा जाता है। सूक्ष्म बटन में सोने की पूरी, हाँ सूक्ष्म बटन में सोने की पूरी नहीं होती, कहाँ होती है सोने की पूरी, कहाँ होती है स्कूल बटन, सोने की पूरी यहाँ ही होती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, उनको साक्षात्कार में सोने का बैठ उनसे दिखाई पड़ा, तो समझा दो ईटे ले जा रहे, ध्यान से उतरा नीचे देखा ईटे तो आई नहीं, तो ये हुआ माया मच्छंदर का खेल। कौन सा मच्छंदर का खेल, ये माया मच्छंदर का खेल है। मच्छंदर मन, मच्छंदर मन मगरमच्छ, माया रूपी ग्रह का ये खेल है। तो ये था साक्षात्कार, तो अच्छा खेल हुआ क्या है, तो समझा कि हम बैकुंठ में जाकर के क्या बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, विश्व का बादशाह बनूंगा। और अंजाम क्या हुआ? आठ फेल हो गए। तो सबकी मारी में इतने सोने हीरे के महल बनाते हैं, तो सतीश के महल कैसे हीरे से सजे सजाए हैं? अतिचार बने होगा, परंतु शास्त्रों में उन्हों का पूरा वर्णन नहीं। कुछ अर्थ के कार्य होती है तो तू चीज करके नीचे चले जाए। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना होता है। इन बातों का कि वहां कैसे महल होंगे, धीरे व्यवहारा होंगे, क्या बुद्धि से काम लेना। हीरे का मतलब हीरे जैसी आत्माओं का संगठन होगा। अभी तो कौड़ी जैसी आत्माओं का संगठन है क्या, चाहे बाहर की दुनिया में मनुष्यों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जा रही हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में शासन सत्ता बनाई जा रही हो, और चाहे एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं की दुनिया में संगठन बन रहा हो, वो सब कैसा है? वो संगठन रूपी किला कैसा है? सब कौड़ियों का किला है, तो हीरों का किला नहीं कहेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि नहीं कर रही, तुम्हारी बुद्धि ऊंची स्टेज में चली गई है, परे से परे, माना इसे नरक की दुनिया सीढ़ी में पहुंच गए, इसे नरक की दुनिया से परे स्वर्ग, और स्वर्ग से भी परे 21वां जन्म। तो तुम्हारी बुद्धि बहुत ऊंची स्टेज में पहुंच गई, रचयिता को जानने से रचना को भी जानती, रचय का कोई पूरा नहीं जान पाया तो रचना को क्या जानेंगे? रचयिता का ही रिगार्ड नहीं कर पाया तो जो रचयिता का रिगार्ड नहीं कर सकेंगे वो फिर रचना का रिगार्ड कर पाएंगे क्या? रचयिता कोई डूबी जा कर दे, मिट्टी के लिंग बनाते हैं और फिर डुबो देते हैं, मान मतलब भला। तो जब रचयिता जो है बीज बाप को उसका भी मान सम्मान खलास कर देते, तो उसकी जो रचना है बस रचना कौन सी है? ब्रह्मा, बड़ी माँ, जगदम्बा, जो नौ देवियां हैं वो आदि शक्तियां कही जाती है। अम्बा को पूजाएं भी देते हैं। तो जो आदि शक्ति जो रचना है उस आदि शक्ति रचना की भी मान मसला नहीं कर सकती, क्योंकि रचयिता कोई नहीं है। सारी शक्ति का राजकुमारी बुद्धि आ जाए, रामा ने ऊंचे से ऊंचा भगवान फिर है ब्रह्मा विष्णु चंद्र, ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु चंद्र उनके उनके तो ऊंचा कौन है? ब्रह्मा कहाँ होता है, परम धाम में या इस शक्ति पर? इस शक्ति पर ब्रह्मा होता है ना, और इसी शक्ति पर ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचे कहा जाता है। तो इस शक्ति से ऊंचे से ऊंचा कौन हुआ? भगवान, फिर ब्रह्मा भी ठीक है। उनका भगवान तो भगवान कोई अलग है, और शंकर कोई अलग है क्या?